नमस्कार भारत, तारीख 26 सितंबर, दिन बुधवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। संयुक्त राष्ट्र महासभा में डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर तीखा हमला, भारत की तारीफ।
There is India, a free society over a billion people, successfully lifting countless millions out of poverty and into the...
हफ्ते भर से राजस्थान में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल जारी, आम लोग बेहाल।
मामी खत्म हो गई है, वहाँ देखने जा रहे हैं, बहुत परेशान है और मजबूरी से आए हुए हैं यहाँ। ये तो लोकल वाले पैसे ज्यादा लेते हैं, बड़ी परेशानी तो बहुत है। अंदर जाके फिर बाहर आए हम तो बोले के भाई ड्राइवर बस से जाओ।
सुनवाएंगे भारत प्रशासित कश्मीर में भाजपा कार्यकर्ताओं के संघर्ष की कहानी।
रात की 12 बजे का टाइम था जब वो लोग आए, बाहर से फायरिंग हुई, हम अंदर बैठे। हमारी जो गवर्नमेंट है यहाँ, पुलिस मिली है मुझे, डर तो है, हालात यहाँ के खराब है, सिक्योरिटी की कमी है।
लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुआ सिनी से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ईरान ने पूरे मध्य पूर्व में अराजकता, मौत और विनाश का माहौल बना रखा है। ट्रंप ने ये बातें न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें अधिवेशन में कहीं। उन्होंने ईरान से परमाणु समझौता रद्द करने के अपने फैसले का बचाव भी किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान का नेतृत्व अपने पड़ोसी देशों, उनकी सीमाओं और उनकी संप्रभुता का सम्मान नहीं करता है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के नेता देश के संसाधनों का इस्तेमाल खुद को अमीर बनाने और मध्य पूर्व में अफरा तफरी मचाने के लिए कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप के भाषण के बाद बोलने वाले फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि उन्होंने संप्रभुता के सिद्धांत को मानने से कभी इनकार नहीं किया, लेकिन इसे हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अमरीका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की पत्नी और उनके करीबी मंत्रियों पर कड़ी पाबंदियों का ऐलान किया है। अमरीका ने उन पर वेनेजुएला को लूटने और सत्ता को मदुरो की मुट्ठी में करने में मदद करने का आरोप लगाया है। वहीं इन सब से बेफिक्र राष्ट्रपति मदुरो ने संयुक्त राष्ट्र महासभा अधिवेशन में दिए अपने भाषण में अपने रुख पर कायम दिखते नजर आए। उन्होंने कहा कि अमरीका की लगाई पाबंदियां उनके जैसे क्रांतिकारियों के लिए बैज ऑफ ऑनर की तरह हैं।
Eso es como una medalla aquí. Cada sanción del gobierno gringo, además de...
ये एक मेडल पहनने जैसा है। अमरीकी सरकार की ओर से लगाई गई हर पाबंदी गैरकानूनी और बेवकूफ़ी भरी तो है ही, इसके अलावा ये हम जैसे क्रांतिकारियों के लिए मेडल की तरह भी है। ये सम्मान की बात है क्योंकि इससे पता चलता है कि हम बहादुर हैं और सही रास्ते पर चल रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के शब्द। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि समाजवाद ने वेनेजुएला को दिवालिया बना दिया है। पिछले 2 सालों में ट्रंप प्रशासन ने मदुरो समेत उनके दर्जनों मंत्रियों पर भ्रष्टाचार, ड्रग्स तस्करी और मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कई कड़ी पाबंदियां लगाई हैं। अमरीकी स्टैंड अप कॉमेडियन और एक्टर बिल कोस्बी को यौन शोषण के अलग अलग मामलों में 3 से 10 साल के जेल की सजा सुनाई गई है। कभी अमरीकी टीवी के सबसे बड़े नामों में शुमार रहे 81 साल के कोस्बी को फैसला सुनाने वाले जज ने यौन हिंसक और दरिंदा कहा। बिल कोस्बी ऐसे पहले सितारे हैं जिन्हें यौन हिंसा के खिलाफ सोशल मीडिया पर चली #MeToo मुहिम के बाद सजा सुनाई गई है। पीड़िता की वकील बीबे किविट्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने मुवक्किल की तारीफ की और उम्मीद जताई कि इस मामले के बाद यौन शोषण की दूसरी पीड़िताएं भी आगे बढ़कर आवाज उठाएंगी।
We have represented Andrea now for almost 14 years. She is an incredible person.
हम ये केस पिछले 14 साल से लड़ रहे थे। मेरी मुवक्किल एक अविश्वसनीय शख्सियत वाली महिला हैं। हमारे लिए भले ही ये अध्याय यहीं खत्म हो गया हो, लेकिन बाकी पीड़िताओं के लिए ये एक शुरुआत है उनकी अपनी किताबें लिखने का। मुझे उम्मीद है कि अब वो ऐसा करने में ज़्यादा सुरक्षित और सहज महसूस करेंगी। यौन शोषण पीड़िता की वकील बीबे किविट्स के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इराक से आ रही खबरों के मुताबिक वहाँ सुवाद अल अली नाम के मानवाधिकार कार्यकर्ता की कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इसका सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं और मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद। न्यूयॉर्क में कल से शुरू हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक अधिवेशन के पहले दिन अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना भाषण दिया, जिसमें उन्होंने ईरान के हुक्मरानों की कड़ी निंदा की। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पूरे मध्य पूर्व में अराजकता, मौत और विनाश का माहौल बना रखा है। लेकिन ट्रंप के भाषण के दौरान एक ऐसा मौका भी आया जब सभागार में मौजूद लोग हंस भी पड़े थे। साथ ही उन्होंने भारत की भी तारीफ की। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें महाधिवेशन में विश्व भर के नेताओं के भाषणों का सिलसिला जब शुरू हुआ तो पहले दिन अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान, फ्रांस समेत कई देशों के राष्ट्रपतियों और राजनेताओं ने विश्व भर के नेताओं को संबोधित किया। सभागार में उस वक्त लोगों की हंसी छूट गई जब ट्रंप ने अपने भाषण के शुरू में ही अपने प्रशासन के बारे में ये दावा किया कि उसने सबसे अच्छे काम किए हैं।
In less than two years, my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. America's so true. Didn't expect that reaction, but that's okay.
लोगों की हंसी सुनकर ट्रंप भी हंसे और कहा, मैंने ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। अपने भाषण के दौरान ट्रंप ने ईरान को कड़ी आलोचना का निशाना बनाया।
Iran's leaders sow chaos, death and destruction.
अमरीकी राष्ट्रपति कह रहे थे कि ईरान ने पूरे मध्य पूर्व में अराजकता, मौत और विनाश का माहौल बना रखा है। ईरान का नेतृत्व अपने पड़ोसी देशों, उनकी सीमाओं और संप्रभुता का सम्मान नहीं करता। ईरान के नेता देश के संसाधनों का इस्तेमाल खुद को अमीर बनाने और मध्य पूर्व में अफरा तफरी मचाने के लिए कर रहे हैं। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान का नेतृत्व आतंकवाद को समर्थन देता है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने बाद में अपने भाषण में ट्रंप के आरोपों का खंडन किया और बातचीत की पेशकश की।
دولت ایالات متحده ای آمریکا دست کم در صورت هیئت حاکمه فعلی خود عزم آن دارد.
ट्रंप का जवाब देते हुए रूहानी ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ईरानी नेतृत्व का तख्ता पलट करना चाहता है। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगाना आर्थिक आतंकवाद है। रूहानी ने कहा कि अमरीका को धमकियों के बजाय बातचीत करने के लिए आना चाहिए। उनका कहना था कि ईरान धमकियों से दबने वाला नहीं। इससे पहले ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान ईरान से परमाणु समझौता रद्द करने के अपने फैसले का भी बचाव किया। उत्तर कोरिया के साथ अमेरिका के नरम और चीन के साथ तल्ख रवैये का भी ट्रंप ने बचाव किया। उन्होंने चीन पर बौद्धिक संपदा की चोरी का आरोप लगाया, जिसकी वजह से अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर की नौबत आ गई। इसके अलावा अमेरिका फर्स्ट की अपनी नीति पर ट्रंप ने फिर जोर दिया और बहुपक्षवाद को नकारा।
अमेरिका इज गवर्न्ड बाय अमेरिकन्स। वी रिजेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ ग्लोबलिज्म।
ट्रंप कह रहे थे कि मैं हर देश की उसकी परंपराओं, विश्वासों और रीति रिवाजों को मानने के अधिकारों का सम्मान करता हूं। अमेरिका आपको नहीं बताएगा कि आपको कैसे रहना है, कैसे काम करना है या किसकी पूजा करनी है। हम आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि बदले में आप भी हमारी संप्रभुता का सम्मान करिए। ट्रंप के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने अपने भाषण में कहा कि वो संप्रभुता के सिद्धांत को मानने से कभी इंकार नहीं करते, लेकिन इसे हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान भारत में गरीबी कम करने की कोशिशों की भी तारीफ की।
There is India, a free society over a billion people, successfully lifting countless millions out of poverty and into the middle class.
भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 29 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगी। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
आते हैं भारत पर। राजस्थान में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से 4,500 बसें हफ्ते भर से डिपो में खड़ी हुई हैं। राजस्थान रोडवेज के अनुसार ये बसें हर रोज लगभग 9,00,000 लोगों को मंजिलों पर पहुंचाती थीं, लेकिन हड़ताल की वजह से ये लोग निजी बस ऑपरेटरों के सहारे चल रहे हैं। कर्मचारी वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और रोडवेज के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, जबकि राज्य की वसुंधरा राजे सरकार ने इस पर चुप्पी साध रखी है। जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
यात्रियों से गुलोगुलजार और बसों की ध्वनि से निनादित रहने वाले रोडवेज बस अड्डों पर अब सन्नाटा पसरा पड़ा है। इस सन्नाटे में या तो हड़ताली कर्मचारियों के बुलंद होते नारों की आवाज़ है या हड़ताल से बेखबर किसी यात्री के पदचाप सुनाई देते हैं।
खरीद करो, खरीद करो, खरीद करो, खरीद करो।
अपने रिश्तेदार की मौत पर निमराना जाने जयपुर के केंद्रीय बस अड्डे पर पहुंचे बिहारी लाल हालात से बहुत मायूस हुए।
बहुत परेशान है और मजबूरी से आए हुए हैं यहाँ। ये तो लोकल वाले पैसे ज्यादा लेते, मामी खत्म हो गई है, वहाँ देखने जा रहे थे। बड़ी परेशानी तो बहुत है, अंदर जाके फिर बाहर आए हम तो बोले गए भाई ड्राइवर बस से जाओ, जनता परेशान है सर, हमें निमराना जाना है।
रोडवेज के बेड़े में चंद नई बसें हैं तो ज़्यादातर बसें पुरानी और उम्रदराज है, लेकिन ये थकी मांदी बसें कभी रुकी नहीं और हर रोज़ लाखों लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती रही। रोडवेज कर्मचारी यूनियन के ओम प्रकाश वशिष्ठ हड़ताल का सबब बयान करते हैं।
हमारी कर्मचारियों की मांगे कम और रोडवेज के जिंदा रहने की बचाने की मांग ज़्यादा है। इसमें नई गाड़ियों की खरीद किसी कर्मचारी की खुद की निजी समस्या नहीं है, कर्मचारी की भर्ती किसी कर्मचारी की निजी समस्या नहीं है। रिटायर लोगों का पैसा, 60 साल तक लोग जो काम करके रिटायर हो गए उनका पैसा दिया जाना सरकार का दायित्व है, उनको देना चाहिए। ये सरकार इन पर गंभीरता से विचार करे। रोडवेज के जो कॉरपोरेशन के रूट हैं उन रूटों के ऊपर प्राइवेट गाड़ियों को परमिट, मंजिला परमिट दिया जाना परमिटेड ही नहीं है। डीनेशनलाइजेशन करके हजारों गाड़ियाँ चला दी, 1500 परमिट के नाम पर इनकी 4000 से ज़्यादा गाड़ियां लोक परिवहन के नाम से रोडवेज के रूटों के ऊपर चल रही हैं। रोडवेज को उनसे भारी नुकसान हो रहा है और राजस्थान की 7 करोड़ जनता को इस बेहतरीन परिवहन सेवा से वंचित करने का यह जो उपक्रम कर रही है, हम इसका विरोध करते हैं।
कर्मचारी पूछते हैं कि जब राजनेता घाटे की सरकार चला सकते हैं तो घाटे की रोडवेज से परहेज क्यों। जयपुर में केंद्रीय बस अड्डे के मुख्य प्रबंधक कैलाश बढ़ाया कहते हैं समस्या गंभीर है।
राजस्थान रोडवेज में पिछले 7 दिनों से हड़ताल है, कोई भी वाहन का संचालन नहीं हो पा रहा। इवन सिंधी कैंप से मेरे लगभग 30,000 यात्री आते हैं, 30,000 यात्री जाते हैं, तो और इनको छोड़ने वाले करीब सब मिला के 1,00,000 आदमी का टर्नओवर मेरे सिंधी कैंप से होता है। जो रेगुलरली मैं इनको जो भी फेस कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोग बड़े परेशान और दुखी हैं। और चूंकि हर आदमी को यात्रा अपनी करनी होती है, इसलिए मजबूरीवश उसको जाके निजी वाहनों में यात्रा करनी पड़ रही है। निजी वाहनों की हमने भी सर्वे करवाया तो जो हमारा निर्धारित किराया है उससे लगभग ये डबल किराए पर यात्रा करवा रहे और उसमें भी एक आरामदायक और सुनिश्चित यात्रा नहीं दे पा रहे। जनता बहुत दुखी है, जनता बहुत परेशान है, विशेषकर जो महिलाएं और बच्चे हैं वो काफी परेशान है और उनको प्रॉपरली यात्रा, सुविधाजनक सम्मानजनक यात्रा नहीं मिल पा रही है जो रोडवेज से मिला करती थी।
ये चुनावी मौसम है, सत्तारूढ़ बीजेपी के नेता गौरव रथ पर सवार हैं और कांग्रेस के सिपह सलार संकल्प यात्रा पर निकले हैं। सियासत की मंजिल तो सत्ता है, ऐसे में उन यात्रियों की कौन सुध ले जो बस अड्डों की फेरी लगा रहे हैं। नारायण बारेठ, BBC जयपुर।
रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां भी एक विरोध प्रदर्शन जारी है। वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU एक बार फिर हिंसक गतिविधियों का शिकार हुआ है। BHU के सर सुंदरलाल अस्पताल के जूनियर डॉक्टर VC कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। पूरे परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। क्या है पूरा मामला ये जानने के लिए सीधा रुख करते हैं लखनऊ का, जहाँ हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र मौजूद हैं। जी समीर, बताएं किस वजह से हो रहा है ये प्रदर्शन।
जी शाहिद, ऐसा है कि अभी ताज़ा स्थिति आपको बता दें कि ये जो प्रदर्शन है छात्रों का, जूनियर डॉक्टरों का, ये अभी वहाँ भी जारी है और इनकी मांग है कि चीफ प्रॉक्टर को हटाया जाए। दरअसल विवाद जो है ये एक दिन पहले शुरू हुआ था। चूंकि आपको, श्रोताओं को हम बता दें कि जो BHU परिसर के भीतर ही जो हॉस्पिटल है, सर सुंदरलाल अस्पताल ये उसके अंदर ही है, वहाँ पे कुछ मरीजों को भर्ती कराने के लिए डॉक्टरों के साथ कुछ वहीं के छात्रों का विवाद हो गया था। विवाद के बाद वहां काफी ज्यादा हिंसा हुई, आगजनी हुई, पत्थर एक दूसरे पर फेंके गए और उसके बाद हॉस्टल, जो जूनियर डॉक्टरों का हॉस्टल है, वहां भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने घुसकर उनके साथ, डॉक्टरों के साथ मारपीट की। उसके बाद जो विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये आदेश दिया कि इन हॉस्टल्स को खाली कराया जाए और अल्टीमेटम दे दिया कि 24 घंटे के भीतर हॉस्टल खाली कराया जाए। तो जो जूनियर डॉक्टर थे ये पूरी तरीके से भड़क गए और इनका ये कहना था कि हमारे ऊपर ही हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है, सुरक्षा नहीं है, हमको मारा पीटा भी गया और हमसे ही हॉस्टल खाली करवाया जा रहा है। इसी गुस्से में, इसी के विरोध में वो लोग धरने पर बैठ गए और अस्पताल की पूरी व्यवस्था भी इस समय चरमरा गई है। सर सुंदरलाल हॉस्पिटल की जो एक बड़ी भूमिका निभाते हैं जूनियर डॉक्टर, वही निभाते हैं, वो सारे के सारे हड़ताल पे हैं। ट्रॉमा सेंटर बंद चल रहा है जहाँ पे कि एक्सीडेंटल केस आते हैं। जूनियर डॉक्टरों के साथ कि अब सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में केवल सीनियर डॉक्टर्स जो है वही मरीज को देख रहे हैं और वहाँ अस्पताल में आने वाले मरीजों को भी बहुत परेशानी हो रही है।
समीर, क्या इस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है, इस मामले में किसी को हिरासत में लिया?
अभी गिरफ्तारी की खबर या हिरासत में लेने की खबर अभी नहीं है, लेकिन केस कई रजिस्टर किए गए हैं और इस बीच में विश्वविद्यालय प्रशासन ने 28 सितंबर तक विश्वविद्यालय में को बंद करने का फरमान जारी किया है। हॉस्टल छोड़ने का उनको 24 घंटे छात्रों को अल्टीमेटम दिया गया है। कुछ बहुत से छात्रों ने हॉस्टल को छोड़ा भी है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन बड़ी संख्या में भी छात्र फिलहाल इसका विरोध कर रहे हैं कि वो हॉस्टल नहीं छोड़ेंगे और चीफ प्रॉक्टर के खिलाफ अपना वो गुस्सा लगातार जारी रखे हुए हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद समीर आत्मज जी, ये BHU में हिंसा और तोड़फोड़ पर अधिक जानकारी दे रहे थे समीर आत्मज मिश्र। बढ़ते हैं आगे। भारत प्रशासित कश्मीर में मुख्यधारा से जुड़ी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर हमले होते रहे हैं, लेकिन पिछले महीने कश्मीर के पुलवामा में एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए चरमपंथ से जूझ रही घाटी में एक ऐसी पार्टी का झंडा उठाना कितना चुनौतीपूर्ण है जिसे कश्मीर के कई हलकों में मुस्लिम विरोधी माना जाता है। श्रीनगर से विनीत खरे की रिपोर्ट।
पिछले महीने बकरीद की रात पुलवामा के भाजपा कार्यकर्ता शब्बीर अहमद भट्ट को नज़दीक से जानने वाले सोफी यूसुफ के पास एक फ़ोन कॉल आया। सोफी यूसुफ कश्मीर घाटी में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं।
रात के 12 बजे मुझे फ़ोन आता है कि शब्बीर को किसी ने किडनैप किया। शब्बीर मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट था पुलवामे का, तो वहाँ असलम साहब SSP थे, उनसे मेरी 2 बजे भी बात हुई। रात के 2 बजे उनको डेड बॉडी मिली एक बगीचे में। अब मैं रात को निकल नहीं सकता था क्योंकि हमें भी डर लगता है बाहर निकलने में। सुबह 7 बजे ईद के दिन सुबह 7 बजे मैं पुलवामा जा रहा हूँ और वहाँ हमने उस डेड बॉडी को लाया। 10:30 बजे हमने उसको जो है अंतिम संस्कार करके दफन करके, तो हमने ईद नमाज भी नहीं पढ़ी। हमारे घर में कुर्बानी थी, हमने कुर्बानी भी नहीं की।
लेकिन सवाल ये कि इन खतरों के बावजूद भी लोग भाजपा में क्यों शामिल हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं के मुताबिक वो घाटी में PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के परिवारवाद को देखने के बाद भाजपा के राष्ट्रवादी एजेंडे से जुड़ना चाहते हैं। घाटी में पार्टी के करीब 550 एक्टिव कार्यकर्ता हैं। जावेद कादरी शोपियां में भाजपा के जिला प्रमुख हैं, वही शोपियां जहां चरमपंथ का जोर रहा है। वो 24 घंटे कड़ी सुरक्षा के घेरे में रहते हैं और पिछले 15 दिनों से अपने ही इस घर में कैद हैं।
रात के 12 बजे का टाइम था जब वो लोग आए, बाहर से फायरिंग हुई, हम अंदर बैठे। हमारी जो गवर्नमेंट है यहाँ पुलिस मिली है मुझे, बाकी ये नहीं कह सकते किसने किया। परिवार में डर है, परिवार में डर। आज भी मेरा बच्चा मतलब रात के नींद में आवाज़ देता है, डर तो है। हालात यहाँ के खराब है, सिक्योरिटी की कमी है हम जैसे लोगों को, क्योंकि आज जो श्रीनगर में बैठे हैं उनके पास 20-20 पुलिस वाले हैं और बैठे हैं श्रीनगर में बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे हैं। जो वर्कर काम करने वाला है, हमारे पास सिक्योरिटी की इस वक्त कमी है। कैटेगरी हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, ये हकीकत बात है।
हमेशा अलर्ट पे रहते हैं,
हमेशा अलर्ट पे रहते हैं एक सिपाही की तरह।
श्रीनगर में मेरी मुलाकात सालों भाजपा से जुड़े शौकत हुसैन वानी से हुई। शौकत अनंतनाग का अपना घर छोड़कर श्रीनगर में किराए के मकान में रह रहे हैं। बेहद परेशान शौकत हुसैन का आरोप है कि पार्टी नेताओं ने उनकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया।
मैंने जितना भी किया अपने दम पे किया, लीडरशिप से कभी मदद नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। इनको बस सिर्फ कुछ लोग, चंद लोग चाहिए जो झंडा उठाए और इनकी गुलामी करें। ये जो मुझसे ही अभी भी तीन लोग लाए हैं जो पूरे वैली को कवर कर रहे हैं, तीनों कश्मीरी पंडित हैं, उनके ही हवाले किया है पूरा कश्मीर। किसी भी व्यक्ति, किसी भी मुसलमान पे कोई भरोसा, कोई विश्वास नहीं करते हैं।
उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता इससे सहमत नहीं। जम्मू कश्मीर में भाजपा के महासचिव संगठन अशोक कौल,
शौकत वानी साहब है, वो थे हमारे एक्टिव वर्कर, लेकिन पिछले 4-5 साल से वो बिल्कुल ही इनएक्टिव है। पार्टी के वर्कर्स को कुछ तो सिक्योरिटी थोड़ी बहुत दी है सरकार ने, जिनको नहीं दी है उनके लिए भी हम सिक्योरिटी मांग रहे हैं। अब सिक्योरिटी से तो नहीं होगा, उनके अकोमोडेशन हो जाए, वो कहीं सेफ जगह में रखे जाए, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं।
श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर ऐसा कोई निशान नहीं है जिससे पता चले कि अंदर पार्टी कार्यालय है। यहाँ पथराव और ग्रेनेड हमला हो चुका है। दफ्तर के एक पार्टी अधिकारी ने बताया कि उनके परिवार को उनकी सुरक्षा की हमेशा चिंता रहती है और जब भाजपा के वरिष्ठ नेता राम माधव श्रीनगर आए थे तो उन्होंने राम माधव के सामने अपनी सुरक्षा चिंताएं जाहिर की थीं। अंदर बैठे कार्यकर्ताओं के मुताबिक उन्हें आश्वासन से आगे सुरक्षा की जरूरत है। विनीत खरे, BBC श्रीनगर।
अब जान लेते हैं कि आज के अखबारों में क्या कुछ खास है। अखबारों के साथ स्टूडियो में पहुंच चुकी हैं सिंधु वासिनी। जी सिंधु वासिनी, बताएं।
शाहिद, आज की बड़ी खबर जो सभी अखबारों के पहले पन्ने पर दिख रही है वो है आधार पर सुप्रीम कोर्ट का आने वाला फैसला। अदालत में 5 जजों की बेंच उन याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी जिनमें आधार के इस्तेमाल की अनिवार्यता को चुनौती दी गई है। और 5 जजों की इस बेंच में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा समेत जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AM खनविलकर भी शामिल हैं। उम्मीद है कि इस फैसले से कई शंकाओं का समाधान होगा और कई सवालों के जवाब भी मिलेंगे, मसलन कि क्या आधार एक्ट वैध है, आधार कितना सुरक्षित है और किस हद तक इसका दुरुपयोग हो सकता है, क्या सरकार को बिना किसी की मर्जी के उसके बायोमेट्रिक डिटेल्स लेने का अधिकार है, वगैरह वगैरह। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक फैसले में कहा था कि राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार जीने के अधिकार का ही एक हिस्सा है, यानी कि एक मौलिक अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट की ही बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं दैनिक जागरण पर देख सकता हूं, कल एक मामले को लेकर उन्होंने एक दिशा निर्देश दिया है कि अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक का कानून बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यह आज हर अखबार की लगभग सुर्खी है। नवभारत टाइम्स पे भी एक हेडिंग लगी हुई है जिसका शीर्षक है, राजनीति में अपराधी कैंसर की तरह, कानून बना संसद करे इलाज।
जी शाहिद, अगली खबर टाइम्स ऑफ इंडिया से, और रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में अब रक्तदान करने वाले पुरुषों को अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन और सेक्स लाइफ के बारे में बताना होगा। उन्हें ये भी बताना होगा कि उनके एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर तो नहीं हैं। अखबार लिखता है कि मुंबई के ब्लड बैंकों को हाल ही में नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल से अपडेटेड गाइडलाइंस मिली जिनमें लिखा हुआ है कि गे और बाइसेक्सुअल पुरुष, सेक्स वर्कर महिलाएं और ट्रांसजेंडर रक्तदान नहीं कर सकते। और इसकी वजह ये बताई गई है कि इनमें HIV और हेपेटाइटिस के संक्रमण का खतरा ज़्यादा होता है।
एक खबर मैं भी बता दूं, दैनिक जागरण की खबर है कि शीर्षक है उसका, 6 राज्यों में घटेगा वैट, सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। इनका कहना है कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, UP, हिमाचल और चंडीगढ़ में वहाँ पर जो डीजल और पेट्रोल पे जो दरें हैं उसको लेकर वैट घटाने पे एक सहमति बन गई है, तो इससे पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है।
जी, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक और खबर है, खबर उत्तर प्रदेश की है जहां पुलिस ने एक लड़की को मुस्लिम लड़के के साथ घूमने पर बुरी तरह पीटा और गालियां दी।
जी सिंधु वासनी, ये सोशल मीडिया में भी बहुत वीडियो इसका ट्रेंड कर रहा है, कल सोशल मीडिया में ट्रेंड करता रहा।
हालांकि अब खबर ये है कि उस जिन्होंने जिस लेडी कांस्टेबल और होमगार्ड ने लड़की को पीटा था उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है।
जी, अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सिंधु वासनी। बढ़ते हैं आगे, केरल में बाढ़ से हुई तबाही से उबरने की कोशिश में ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा कमाने के लिए एक बार फिर खाड़ी देशों का रुख कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में केरल से खाड़ी देशों में काम के लिए जाने वाले लोगों की संख्या में काफी गिरावट आई थी, लेकिन अब एक दूसरी ही तस्वीर उभरती नजर आ रही है। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
बहुत साल दुबई में काम करने के बाद सजीत नम्बूदरी अपने गाँव वापस आ गए। उनका मकसद अपने बूढ़े माता पिता के साथ वक्त गुजारना था। एक और वजह यह भी थी कि उन्होंने अपने घर के लिए जरूरत की हर चीज जुटा ली थी। खर्च के बिना वो अपने लिए एक छोटी सी कार और मोटरसाइकिल भी खरीद ली थी। और जब से वापस आए वो कोची देवसम बोर्ड में पुजारी का काम कर रहे थे, लेकिन पिछले महीने के बाढ़ ने उन्हें तबाह कर दिया। त्रिशूर जिले में चलकुड़ी के वेटुकाडवो पालम गांव में उनके घर में हर चीज कंपाउंड में बिखरी हुई है। सजीत नम्बूदरी ने BBC को बताया,
अभी वापस फिर दुबई जाना चाहिए सोच रहा है, क्योंकि अभी सिरों से शुरू होना चाहिए, एक एक खरीदना चाहिए, अब कुछ अभी एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कल खाली सोने के लिए 2 बेड लिया और बेडशीट लिया, सो रहा है। अभी एक एक लाना चाहिए दुकान से।
तो आप दुबई में क्या काम कर रहे थे?
मैं तो इलेक्ट्रिशियन था, वेल्ड टावर में, बुर्ज खलीफा, 7 साल उसमें खड़ा था, अभी इधर आके 7 महीने हो गया है।
सजीत नम्बूदरी का घर चलकुड़ी नदी से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। उनके घर में पानी का निशान करीब 11 फीट ऊंचाई तक दिखाई देता है, तो जाहिर होगा कि घर में हर काम की चीज खराब हो गई हो, इसीलिए वो फिर से खाड़ी देश जाकर पैसा कमाने का सोच रहे हैं। सजीत नम्बूदरी जो कह रहे हैं उस पर किसी को हैरानी नहीं हो रही है। तिरुवनंतपुरम के सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज के प्रोफेसर इरोडया राजन ने BBC को बताया,
नो दिस सर्वे वाज डन प्री फ्लड्स, दिस सर्वे वाज डन बिटवीन जनवरी 1 2018 टू मार्च 31।
पिछले 20 साल से हम केरला माइग्रेशन सर्वे करते आ रहे हैं और हमारा सर्वे दिखाता है कि जो कोई बाहर काम करते हैं वो करीब 30 से 50% पैसा زمین اور گھر بنوانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ کیرلہ میں ہر سال باہر سے لگ بھگ 85,000 کروڑ روپیہ آتا ہے۔ ہمارے حساب سے لگ بھگ 40,000 کروڑ روپیہ گھر بنانے اور اس کے لیے ضروری سامان لینے میں خرچ ہوتا ہے۔ تو ابھی جب گھر اور گھر کے وستوؤں کو اتنا نقصان پہنچا ہے تو ظاہر ہے کہ لوگ ابھی پھر سے باہر جائیں گے۔ یہ تھے پروفیسر ایرڈے راجن۔ دراصل پچھلے 5 سال میں کیرلا سے کھاڑی دیشوں میں کام کرنے والوں کی سنکھیا 24 لاکھ سے گھٹ کر 21 لاکھ پہنچ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دکشن بھارت میں 20 سے 34 سال کے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کام کرنے کے لیے کھاڑی دیشوں میں جاتے تھے، اور اتر بھارت میں اس عمر کے لوگوں کی سنکھیا زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اسی لیے زیادہ لوگ اتر پردیش، بہار اور پنجاب جیسے راجیوں سے دیش کے باہر کام کے لیے جا رہے ہیں۔ عمران قریشی، بی بی سی، ترونتپورم۔
دبئی میں بیتی رات کھیلے گئے ایشیا کپ کے سپر فور کے بے حد رومانچک مقابلے میں بھارت اور افغانستان کے بیچ میچ ٹائی ہو گیا۔ افغانستان نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 8 وکٹ پر 252 رن بنائے تھے اور بھارت کو جیت کے لیے 253 رنوں کا لکشیہ دیا تھا۔ بھارتی ٹیم 50ویں اوور کی انتم گیند پر 252 رنوں پر آل آؤٹ ہو گئی۔ بھارت کی اور سے سب سے ادھک 60 رن کے ایل راہل نے جبکہ 57 رن امباتی رائیڈو نے بنائے۔ وہیں افغانستان کی اور سے اوپنر بلے باز محمد شہزاد نے شتکیہ پاری کھیلتے ہوئے کل 124 رن بنائے۔ بھارت کی اور سے رویندر جڈیجا نے 3، کلدیپ یادو نے 2، خلیل احمد، دیپک چاہر اور کیدار جادھو نے 1-1 وکٹ لیا۔ ایشیا کپ کے لیے ٹیم کے کپتان بنائے گئے روہت شرما کو کل آرام دیا گیا تھا، تو اس میچ کی کپتانی وکٹ کیپر بلے باز مہیندر سنگھ دھونی کر رہے تھے۔ بطور کپتان یہ دھونی کا 200واں انتراشٹریہ ایک دیوسیہ میچ تھا۔ آج ایشیا کپ کے ساتھ ساتھ کھیل جگت میں کیا کیا ہونے والا ہے، جان لیتے ہیں کھیل سماچاروں میں جیوتیکا سنگھ سے۔
ایشیا کپ 2018 کی بات کریں تو شیخ زائد سٹیڈیم میں آج پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیم کے بیچ مقابلہ ہوگا۔ سپر فور کے اس آخری مقابلے کی اہمیت سیمی فائنل جیسی ہو گئی ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں کے 2-2 کے انک ہیں، جیتنے والی ٹیم فائنل میں پہنچے گی۔ بھارت پہلے ہی 4 انکوں کے ساتھ فائنل میں جگہ بنا چکی ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں بھارت کے خلاف سپر فور میچ ہار چکے ہیں، اور دونوں ہی ٹیموں نے افغانستان کے خلاف اپنے اپنے میچوں میں جیت حاصل کی ہے۔ دیکھا جائے تو پاکستان کا رن ریٹ بنگلہ دیش کی ٹیم سے بہتر ہے۔ اگر کسی وجہ سے میچ رد ہوتا ہے تو رن ریٹ کے آدھار پر پاکستان فائنل میں پہنچ جائے گی۔ اور اب بات مہیلا کرکٹ کی۔ کپتان ہرمن پریت کور کے اردھ شتک اور پونم یادو کی گیند بازی کے دم پر 5واں اور انتم میچ جیت کر بھارتی ٹیم نے سری لنکا کے خلاف T20 سیریز کو 4-0 سے اپنے نام کر لیا ہے۔ FTZ سپورٹس کمپلیکس میدان پر کل کھیلے گئے میچ میں بھارتی مہیلاؤں نے میزبان سری لنکا کو 51 رنوں سے ہرا دیا۔ اور اب جانے سے پہلے بات ٹینس کی۔ جرمنی کے ٹینس کھلاڑی الیگزینڈر زویریف کی دکشن افریقہ کے کیون اینڈرسن پر جیت کے ساتھ ہی ٹیم یوروپ نے ٹیم ورلڈ کو مات دے کر روڈ لیور کپ کا خطاب اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ ٹیم یوروپ نے ٹیم ورلڈ کو 13-8 سے ہرایا ہے۔ کھیل سماچاروں میں آج اتنا ہی۔
وقت ہو چلا ہے کارکرم کی سماپتی کا، لیکن اس سے پہلے مکھیہ سماچار ایک بار پھر سندھو واسنی سے۔
بی بی سی سماچار۔ امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے سنیکت راشٹر مہا سبھا کے 73ویں ادھیویشن میں کہا کہ ایران نے پورے مدھیہ پورو میں اراجکتا، موت اور وناش کا ماحول بنا رکھا ہے۔ امریکہ نے وینیزویلا کے راشٹرپتی نکولس مدورو کی پتنی اور ان کے قریبی منتریوں پر کڑی پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ وہیں راشٹرپتی مدورو نے کہا کہ یہ پابندیاں ان کے لیے ایک میڈل پہننے جیسی ہیں۔ امریکی اسٹینڈ اپ کامیڈین اور ایکٹر بل کوسبی کو یون شوشن کے الگ الگ معاملوں میں 3 سے 10 سال کے جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ عراق سے آ رہی خبروں کے مطابق وہاں سواد العلی نام کے مانواधिकार کاریکرتا کی کچھ اگیات بندوق دھاریوں نے گولی مار کر ہتیا کر دی ہے۔ گھٹنا عراق کے دکشنی شہر بسرا کی بتائی جا رہی ہے۔ बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे देवाशीष कुमार। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com के साथ। मोहम्मद शाहिद को समस्त सहयोगियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।